शांति। सभी कहेंगे एक साथ फिर से ओम शांति, एक बार फिर ओम शांति। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी राजयोग से संबंधित कई विषय सुन के आ रहे हैं। आत्मा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, कैसे राजयोग करना है वो भी आपने जाना। राजयोग से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है वो भी आपने समझा। फिर उसके बाद अपने काल चक्र को भी समझा और इस समय कौन सा समय चल रहा है वो भी जाना। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो समय चल रहा है वो बड़ा ही नाजुक समय है, तो ऐसे नाजुक समय पर हमें क्या करना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, किस कर्म का क्या फल मिलेगा, तो कैसे इस कर्म की गति को हम समझें, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जिस कर्म की गति के लिए कहा जाता है कि कर्म की गति इतनी गुह्य है, जो साधारण इंसान इस गति को, कर्म की गति को यानी कर्म और उसका परिणाम, उसको समझ नहीं सकता है। और कई बार उसके मन में प्रश्न उठते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे क्यों मुझे सजा मिल रही है, मैंने तो किसी को दुख दिया नहीं, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, ये क्यों मुझे ऐसे कह रहा है। तो कई प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं, ऐसा क्यों। तो कर्म की गति को अगर हम समझ जाएंगे तो प्रश्न हमारे अंदर में नहीं उत्पन्न होंगे। और ये अटल निश्चय हमें रखना होगा कि कर्म की गति बलवान है, कर्म की गति बलवान है, इसीलिए मनुष्य चाहे कितने भी बहाने बनाए वो कर्म की गति से बच नहीं सकता। तो क्या है कर्म और क्या है उसकी गति या उसका परिणाम, और मुझे कैसे अपने कर्मों को बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए, क्या मुझे इससे लाभ होगा। और अभी समय की मांग भी यही है, इसीलिए बहुत जरूरी बन गया है, तो इन बातों को आज हम समझेंगे। तो कर्म की गहन गति के लिए पहले ये समझना होगा कि कर्म क्या चीज है। जब हम किसी से पूछते हैं कर्म क्या चीज है, तो कई लोग इस शब्द से मुंह जाते हैं, कर्म क्या चीज है, कहते कर्म तो कोई कार्य होता है, हम कुछ भी काम करते हैं वो कर्म है। तो साधारण रूप से कर्म को समझना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी कार्य हम करते हैं वो कर्म है। और अगर उसको व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कोई भी क्रिया एक कर्म है, देखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना पीना, सोना, जागना, हंसना रोना ये जो भी क्रियाएं हैं ये कर्म ही हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं है कि कोई क्रिया कर रहे हैं, इतना ही नहीं है कोई हम कृति कर रहे हैं या कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कर्म की परिभाषा बहुत गहरी है इनसे। तो हम देखेंगे कर्म की परिभाषा क्या है, कर्म अर्थात कार्य और उसका परिणाम, ये दोनों ही कर्म के अंतर्गत आता है। केवल कार्य ही कर्म नहीं है, परंतु उस कार्य का परिणाम क्या निकलना है वो भी कर्म के अंतर्गत सम्मिलित है। इसीलिए कर्म को हम इतना हल्का न ले, केवल देखना उठना बैठना चलना फिरना यही केवल नहीं है, क्योंकि किस वृत्ति से हम देख रहे हैं। चलो देखना कोई बुरी बात नहीं है, सभी देखते हैं, इंसान भी देखता है, जानवर भी देखते हैं, पक्षी भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, तो देखना कोई पाप नहीं है। लेकिन देखना पाप कब बन जाता है, जब देखते समय हम बुरी नजर से देखते हैं, खराब भावना से देखते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि कई ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जो बुरी नजर रखता है उसको श्राप मिल जाता है, बद्दुआ मिल जाती है कि तेरा मुंह काला, क्योंकि बुरी नजर रखी कोई किसको देखता है और दूसरा उसको कहता है कि मुझे ऐसे क्यों देखते हो, वो कहेगा माफ करना, देखना तो पाप नहीं है, लेकिन हाँ देखना पाप बन सकता है अगर हम बुरी नजर से देखते हैं, अगर हम ईर्ष्या नफरत वैर दुश्मनी उस भावना से देखते हैं तो अवश्य वो पाप बन जाता है। और अगर शुभ भावना से देखते हैं, शुभ कामना रख करके देखते हैं, दया की भावना है, स्नेह की भावना है, तो वो देखना पुण्य बन जाएगा। तो देखना तो एक क्रिया है, लेकिन जिस भावना वृत्ति दृष्टि से देखा उसके आधार से कर्म का स्वरूप बदल जाता है। तो हम देखेंगे कार्य और उसका परिणाम, इनको हम कर्म कहेंगे। और कर्म सिद्धांत की जहां बात आती है तो हम साइंस में इसका बहुत सुंदर सिद्धांत सुनते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन, जिसमें बताया गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया और प्रतिक्रिया समान भी है और बराबर भी है। कई गेंद हैं और एक गेंद हम इन गेंदों को मारते हैं, तो जितनी गति से जितनी शक्ति से हमने उस गेंद को और गेंदों पर मारा, तो जो अंतिम गेंद है उन गेंदों में से वो हट करके वापस उसी शक्ति से आता है, उतनी शक्ति से जाकर आता है। अर्थात हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब ये अगर हमने विज्ञान में स्वीकारा है तो आध्यात्म में भी इसको अवश्य हम स्वीकार करते हैं कि जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। तो कारण और परिणाम ये है कर्म का सिद्धांत, कारण भी है और परिणाम भी है। कोई भी परिणाम बिना कारण के नहीं होता है, कोई भी फल अगर आया तो बिना बीज के नहीं आया, अवश्य कोई बीज डाला था और आज उसका मुझे फल मिला है। तो कर्म सिद्धांत को समझना माना कारण और परिणाम को समझना। तो जब कारण और परिणाम की जहां बात आती है तो फिर कर्म शब्द का एक मूल अर्थ बन जाता है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमको वापस मिलता है। अर्थात हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। ये कर्म सिद्धांत है। अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुख जरूर मिलेगा, आप किसको सुख देंगे तो सुख मिलेगा। ये है कर्म सिद्धांत। ये हो नहीं सकता कि आपने किसको दुख दिया और आप ये अपेक्षा करो कि उससे आपको सुख मिले, और ये भी नहीं हो सकता कि आपने किसको सुख दिया और वो आपको दुख दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। वास्तव में तो सिद्धांत यही है कि आपको वही मिलेगा जो आप दूसरे को देते हो। लेकिन 3 मिनट हम सब साइलेंस में बैठेंगे। जब हमने ये कर्म सिद्धांत समझा कि आप किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, जो आपने दिया है वही आपको वापस आएगा। वास्तव में ये न्याय भी है, ये न्याय संगत है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि अन्याय दिखाई देता है। हमने तो किसको दुख सुख दिया, दुख तो दिया नहीं, लेकिन वो व्यक्ति हमको दुख ही दे रहा है। तो हम कहते हैं, अरे मैंने तो उसको कितना सुख दिया, देखो वो मुझे कितना दुख दे रहा है। मैंने तो जीवन में किसको दुख दिया ही नहीं, तो ये भगवान मुझे क्यों दुख मिल रहा है। क्योंकि समझते हमने किसी को दुख नहीं दिया है तो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें हम दो बातें बताते हैं कि अगर दुख मिल रहा है, आपने किसी को नहीं दिया है फिर भी मिल रहा है, तो अवश्य ये कोई पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। इस जन्म में आपने नहीं दिया होगा लेकिन पहले का कोई हिसाब किताब है जो चुकतु हो रहा है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। चलो चुकतु हो रहा हिसाब किताब, आपके सिर पर कोई ऋण है और वो ऋण चुकतु हो रहा है तो खुशी होती है। और दूसरी बात है कि अगर वो दुख दे भी रहा है तो जबरदस्ती कोई दुख किसको दे नहीं सकता है, अगर हम अपने आप लेते नहीं है, आपकी अगर परमिशन ही नहीं है तो आप दुख नहीं लेंगे, वो चाहे कितना भी आपको दुख दे आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर है कि आप उसको दुख के रूप में लेते हो या नहीं लेते हो। कई बार कोई दो गाली दे देता तो हम कहते जाने दो छोड़ो, और कोई को दो गाली मिली तो उसकी चिंता करे क्यों इसने दी, क्या समझता है मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं छोड़ूंगा थोड़ी, मैं भी इनको दो का चार दिखाऊंगा, तो हम बदले की भावना रखते हैं। परंतु कोई तो उसको इग्नोर कर देता, चलो दिया क्या कहां लगा छोड़ो जाने दो। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने उसका दुख लिया या नहीं लिया। इसीलिए कर्म शब्द के मूल अर्थ को जब हम समझते हैं, उसका सिद्धांत समझते हैं कि आपको वही बात मिलेगी जो आपने दी है। अगर आपने नहीं दी है तो आप मत लो, नहीं लो, पर अगर ले लेते हैं तो जरूर कोई हिसाब किताब है, चलो वो चुकतु हो गया पूरा हो गया, उसको बढ़ाओ तो नहीं उस दुख को। इसीलिए इसको हमें समझना होगा कि कर्म सिद्धांत कोई बड़ी बात नहीं है समझना। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल काटेंगे। अगर आप आम का बीज बोएंगे और आप सोचो मुझे अनार मिल जाए इस पेड़ से, कैसे मिलेगा, आपने बीज तो आम का ही बोया है। इसीलिए जैसा बीज बोएंगे जैसा डालेंगे वैसा ही पाएंगे, ये कर्म सिद्धांत का सबसे सरल अर्थ है। और इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं इस सिद्धांत से, कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि कोई मुझे गुस्सा करे, अगर आप नहीं चाहते कि कोई मुझे गुस्सा करे तो आप भी मत करो। लेकिन अक्सर करके हम कर लेते और सोचते वो हमको गुस्सा नहीं करे, पर हमने तो कर लिया, वो हम अपनी भूल तो स्वीकार नहीं करते और दूसरे के लिए कहते क्यों तुमने गुस्सा किया। इसीलिए इससे हमें यह शिक्षा लेनी होगी कि हमको वही मिलेगा जो हमने दिया है, हम और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते कि दिया हमने कुछ और मिलेगा कुछ और। तो जैसे ये शिक्षा हमको मिलती है तो हमारे कर्म ही हैं, वही कारण है जो सही समय पर कर्म फल के रूप में सामने आते हैं, ये सही समय पर आएंगे। कई बार कोई व्यक्ति किसको बहुत दुख देता है और खुद मौज करता है, सबको दुख देता रहता है, डांटता रहता है, मारता रहता है, गालियां देता रहता है और देखो मौज में रहता है, उसको तो कोई दुख है ही नहीं, सबको दुख दे दिया और खुद तो मौज कर रहा है। परंतु ये भी हम कभी नहीं समझे कि ये मौज कर रहा है और इतना दुख दिया है सबको, एक दिन आएगा अवश्य उसका भी न्याय होगा। अभी वो संचित हो रहा है, उसने जो वो पाप कर रहा है वो संचित हो रहा है, संचित हो रहा है, एक दिन वो बाहर आएगा। इसलिए जो चीज संचित हो रही है तो वो तो पता ही नहीं चल रही है। अभी जो वो सुख भोग रहा है, हो सकता है मोटर गाड़ियों में घूमता है, बहुत मान मिलता है, बहुत शान है, उसकी बड़ी महिमा है, बड़ी तारीफ है, बड़ा पोजीशन है, और एक नंबर का बुरा काम करने वाला है मान लो। लेकिन अगर अब उसको बहुत कुछ ये सम्मान मिल रहा है, ये इस कर्म का जो अभी कर रहा है उसका फल नहीं है, ये पिछला उसका कुछ अच्छा कर्म संचित है, वो संचित कर्म का उसको अभी फल मिल रहा है, जो बहुत मान शान इज्जत महिमा पोजीशन सब मिल रहा है। और जैसे ये खत्म होगा फल, फिर इस कर्म का फल तो आएगा, कहाँ जाएगा। इसीलिए हम कभी भी तुरंत न देखें कि ये कर ऐसा रहा है और पा तो कुछ और रहा है, ये कैसा न्याय। लेकिन समय तो लगता है ना, हर बीज कोई तुरंत थोड़ी फल देता है, समय लगता है। कोई बीज जल्दी फल देते हैं, कोई बीज बहुत देर के बाद फल देते हैं। तो इसीलिए कर्म सिद्धांत को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये भी देखना होता है कि कई बार कर्म तो वही लगता है लेकिन फिर भी परिणाम अलग होता है। क्यों? मान लीजिए मेरे हाथ में मेरी ये उंगली है और मैंने हवा में एक लकीर खींची। अब हवा में लकीर खींची, ये कर्म तो मैंने किया और हवा में तो लकीर खींच गई पर दिखाई तो दी नहीं, वो तो हवा में खींच गई। और एक सेकंड में चलो अगर खींच भी गई, दिखाई भी नहीं दी तो पता भी नहीं चला कि खींची भी। लेकिन अगर मैं यही उंगली लेकर के पानी पर खींचती हूँ लकीर, तो एक सेकंड के लिए वो लकीर दिखाई देगी लेकिन उसके बाद फिर गुम हो जाएगी। पर यही अंगुली लेकर के मैं रेत पर लकीर खींचती हूँ, सागर के किनारे बच्चे बहुत कुछ रेत पर खेलते रहते हैं, चित्र बनाते रहते हैं, तो रेत पर अगर हम लकीर खींचते हैं तो वो काफी समय तक चलती है और जब तक कोई पाँव न रखे या हवा नहीं आए तब तक वो खींची रहती है। परंतु अगर मैंने कोई नुकीली चीज लेकर के पत्थर पर लकीर खींची तो कर्म वही है। चाहे हवा पर खींची लकीर, चाहे मैंने पानी पर खींची, रेत पर खींची, अब मैंने पत्थर पर खींची और वो भी एक नुकीली चीज लेकर के, तो वो लकीर तो बहुत देर तक चलेगी, सालों साल चलेगी। इसीलिए कहा जाता है पत्थर पर लकीर, ये तो कभी बदलने वाला नहीं है। इसके अंदर तो पत्थर पर लकीर जैसी बात घुस गई है, छोड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो बहुत समय तक चलेगी। तो किस पर खींची उस पर भी निर्भर होता है। आज कोई किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे थप्पड़ मार दे या जूता मार दे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, परंतु एक प्राइम मिनिस्टर को जाकर के जूता मारे तो उसको तो जेल में डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर को जूता मारा, प्रेसिडेंट को मारा या उसके लिए ऐसे ये किया तो उसकी तो बहुत बड़ी सजा है क्योंकि किसको किया, साधारण व्यक्ति थोड़ी था। तो इसीलिए जिसके साथ हमारा कर्म का संबंध है उस पर भी बहुत निर्भर करता है उस कर्म के फल का। अब ये भी हमें देखना होगा। तो हम देखेंगे आगे कि बीज बोने और फल पाने के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यहाँ बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स बैठे होंगे, खेती करने वाले बैठे होंगे। ये तो नहीं है कि आप एक बीज डालते हो तो एक ही फल मिलता है और तुरंत मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है और कई बार तो सीजन में ही मिलता है और कई बार पानी नहीं डाला तो फल ही नहीं मिलता है, सब सूख जाता है, सड़ जाता है। तो अगर हम बीज डालते हैं तो उसके लिए तीन सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो ये है कि जैसा बीज वैसा फल। आप अगर आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलने वाला है, चाहे कितने समय के बाद भी, और कोई फल नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। दूसरा है कि ये नहीं है कि एक बीज डाला तो एक ही फल मिलेगा। आपने जो एक बीज बोया आम का, चलो वो कितने समय के बाद भी मिले पर कितने फल निकलेंगे ये थोड़ी आपको पता चलेगा। बीज तो एक ही डाला और कितने फल निकलेंगे, और हर सीजन में निकलते हैं, कोई सीजन में नहीं भी निकलते हैं, पर आप ये बीज डालते समय तो पता नहीं कर सकते हैं कि कितने फल मिलेंगे आपको, गिनती थोड़ी कर सकते हो, तो मिलते जाते तब पता चलता है कितने फल निकले। तो उस कर्म जो मैंने किया उसकी कितनी शक्ति है और उस रूप से कितना परिणाम होगा ये तुरंत पता नहीं चलता है। इसीलिए कर्म को बहुत सोच समझ करके हमको करना होगा। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ करके कर्म करो। पर हम लोग क्या करते हैं, कर्म तो कर लिया, फिर करने के बाद हम समझते हैं कि ये गलत किया, और समझा कि ये गलत है फिर सोचते अभी क्या करूं, पता नहीं किसको पता चल गया तो कोई ऐसी सजा मिलेगी तो। इसीलिए हमें पहले सोचना है, फिर समझना है और फिर करना है। ये नहीं कि करने के बाद समझना है फिर सोचना है कि अभी क्या करें। यहां तक भी कहा गया है सोचने से पहले भी सोचो कि मैं क्या सोचने जा रहा हूं, क्योंकि उस अनुसार मेरा कर्म होगा। अगर वो कर्म उसका सही नहीं होगा तो मैं सोचो ही नहीं वो बात। अगर मैं किसके लिए कहती जा मर जा मर जा मर जा, फिर उनसे पूछा जाता है तुम बार बार यही कहते हो मर जा, क्या सचमुच आप चाहते हो वो मर जाए? ये तो नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। अगर आप नहीं चाहते हो कि मर जा तो बोलते कि वो सोचते होंगे तभी तो मुख से निकलता है, नहीं तो क्यों मुख से निकलना चाहिए? और अगर मुख से निकल रहा है माना आप चाहते हो कि हो, नहीं चाहते हो तो बोलो ही नहीं, सोचो ही नहीं। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो। सोच हमारी कैसी चल रही है मन में उस पर भी बहुत निर्भर है। तो इसीलिए दूसरा सिद्धांत है कि बीज जितने बोते हैं फल उनसे ज्यादा मिलते हैं। आपने बोला तो एक ही शब्द लेकिन सारी उम्र आपने दुश्मनी पैदा कर ली उस व्यक्ति के साथ, बोला तो एक ही शब्द केवल उसको। जब भी वो आपसे मिलेगा वो कहेगा आपने मुझे ये कहा था। आप कहेंगे भाई भूल जाओ, माफ करो, उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने आपको ये कह दिया। लेकिन आपने बोला क्यों? बोला क्यों? क्योंकि एक बार बोला तो वापस में तो वो शब्द जाएगा नहीं ना मुंह में। ये जो हमारे होंठ है वो कमान के समान है और शब्द जो निकलते वो तीर के समान है। एक बार तीर कमान से निकल गया वो वापस थोड़ी कमान में आएगा, वो तो निकल गया। इसीलिए क्या इसका परिणाम होगा ये तुरंत पता नहीं चलता है। फिर तीसरी बात है कि बीज बोने का समय और फल प्राप्त करने का समय भी अलग अलग होता है। नारियल का पेड़ देखो, बीज डालते हैं न जाने कितने सालों के बाद फल निकलता है। आम का बीज बोएंगे चलो जल्दी निकल आएगा, सब्जी बोएंगे बहुत जल्दी 15 दिन में निकल आएगी। तो इसीलिए हर बीज अलग है, उसका परिणाम उस रूप से अलग है, समय अलग है। तो इसीलिए कर्म के सिद्धांत को भी समझना इतना सहज नहीं है। जैसे वो खेती का हमको ज्ञान चाहिए वैसे कर्म की खेती का भी ज्ञान चाहिए। इसलिए संसार को हम क्या कहते हैं, कर्म क्षेत्र। ये कर्म क्षेत्र है, इसमें कर्म रूपी बीज हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि जैसा बीज वैसा फल। अगर आप जो भी बीज डालेंगे वो फल मिलेगा। अब कांटा डालेंगे तो आप अपेक्षा करो कि फल मिले, कैसे मिलेगा, या फूल मिले कैसे मिलेगा। इसीलिए दुख दिया दुख मिलेगा ये ललाट पर लिख दो कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। चाहे वो किसी भी रूप में मुझे देने की कोशिश कर रहा है, मुझे लेना भी नहीं है। देना तो नहीं है पर लेना भी नहीं है। हम लोगों को बाबा यही कहते हैं, बच्चे किसी को दुख मत दो, पर अगर कोई देता है तो लो भी नहीं। कोई आपको जबरदस्ती दुख नहीं दे सकता है। तो इसीलिए दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। ये पहला सिद्धांत हम समझें। दूसरा सिद्धांत है कि बीज जितने बोते हैं फल उनसे ज्यादा मिलते हैं। अर्थात फूल का एक बीज बोने से कई फूल निकलते हैं। इसी प्रकार जैसे गेहूं का एक दाना बोने से कई गुना दाना ज्यादा गेहूं के निकलते हैं, तो दाने फल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो वो सुख या दुख अनेक गुना मिल सकता है, इसको भी हम कभी भूले नहीं। और तीसरा सिद्धांत है कि समय अलग अलग होता है, बीज डालने का और फल पाने का समय अलग अलग होता है। तो सदा याद रहे कि अगर आज हमारे कर्मों का परिणाम दिखाई नहीं देता मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हर बार असफल होता हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप घबराइए मत, धीरज रखिए, हिम्मत हारिए मत, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन ये रंग जरूर लाएगा। क्योंकि सफलता और असफलता को हम असफलता को सफलता से दूर न करें। ये नहीं है कि असफलता हुई माने हार हो गई। अनेक पड़ाव है असफलता के, लेकिन एक दिन तो सफलता मिलेगी जरूर। इसीलिए थोड़ा धीरज रखना पड़ता है उस सफलता को पाने के लिए। निराश होकर, हताश होकर के बैठ नहीं जाना है, क्योंकि एक दिन उसका फल जरूर निकलने वाला है। अब ये अगर हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो जरूर हमें इंतजार करना होगा और उस अनुसार हम फल को पाएंगे। तो समय और कर्म का भी आपस में बड़ा संबंध है। एक बहुत छोटा उदाहरण दिया गया है कि देखो, एक पंछी है, वो चींटियों को खाता रहता है, लेकिन जब पंछी मर जाता है तो चींटियां उसको खाती है। रिटर्न मिल गया, उसने चींटियों को खाया और चींटियां फिर वो मरे हुए पंछी को खा लेती है, रिटर्न मिला ना। एक वृक्ष है, उसमें से कितनी दिया सलाई कोई बनाए, माचिस बनाते हैं तो लकड़ी तो चाहिए। एक वृक्ष काटा और उसमें करोड़ों दिया सलाई माचिस की तीलियां बनाई, लेकिन एक माचिस की तीली ही पर्याप्त है जो जंगल के जंगलों को भी आग लगा सकती है। तो समय और कर्म का आपस में बहुत गहरा संबंध है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकते हैं। आज मनुष्य को कोई पोजीशन है, बड़ा अभिमान है उसको, और उस अभिमान के कारण वो अनेकों को नीचा करता है, दुख देता है, गाली देता है, अपमान करता है और रुश्वत खाता है, बहुत कुछ गलत काम करता है, क्योंकि पोजीशन है तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। पर एक दिन वो पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड हो जाएगा तो हो सकता है उसका डिमोशन भी हो जाए बाद में। और जो उसके नीचे थे, जिनको उसने खूब दबाया, खूब दुख दिया और ऊपर चढ़ा, एक दिन वो इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और वो नीचे आ जाएगा। ये भी कर्म की गति है। इसीलिए कहा जाता है धीरज का फल मीठा है। कोई कुछ भी कर रहा है, एक दिन तो उसको फल मिलना ही है। वैसे ही कहा जाता है ईश्वर के घर में देर है, लेकिन क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। लेकिन हम उस देर को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कह देते हैं भगवान तुम्हारे दुनिया में न्याय कहाँ है, न्याय नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की दुनिया में पूरा न्याय है। लेकिन हम तुरंत फल की इच्छा रखते ना, इसीलिए लगता है कि न्याय नहीं है। तो आज आप बलवान हो सकते हो, परंतु याद रखें कल समय आपसे ज्यादा बलवान हो जाएगा। आज मैं जवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, पर कल बूढ़ा हो गया तो फिर आज मैं अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं करता हूँ, उनको मैं निकाल देता हूँ। कल मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर हमारे बच्चे हमको निकाल देंगे, वो कहेंगे कि आपने भी तो अपने माँ बाप को निकाला, अभी तुम भी निकलो। तो इसीलिए बच्चे तो देख रहे हैं ना हम क्या व्यवहार कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, तो वो हमारे साथ करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। इसीलिए समय और कर्म, इनका बहुत गहरा आपस में संबंध है। तो बीज बोने से लेकर के फल पाने तक की भी यात्रा ध्यान देने योग्य बातें हैं। बीज तो हमने बोया, अब बहुत समय के बाद हमने देखा फल निकला ही नहीं। अब क्या कारण था जो बीज तो बोया पर फिर भी फल नहीं निकला? तो इसका कारण है कि धरती भी उपजाऊ चाहिए। आज मैं किसी भिखारी को 5 रुपया 10 रुपया देता हूँ, पर वो भिखारी जाकर के शराब पीता उस 10 रुपये से या जो भी दिया, तो आपका तो बीज निष्फल गया। इसीलिए जिस पात्र को मैं दे रहा हूँ वो भी तो योग्य हो। अगर वो जाके शराब पिएगा उस धन से तो तो हमारा जो दान था वो तो निष्फल गया, वो कोई पुण्य तो बना नहीं। और हमने सोचा मैंने तो बड़ा पुण्य किया, एक भिखारी को 10 रुपया दिया, पर उसने क्या किया जा करके वो तो पता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है पात्र को देखो, कुपात्र को दान देने से निष्फल जाएगा। तो बीज तो हमने डाला पर धरती को उपजाऊ तो किया नहीं, खेत में खाद तो डाली नहीं, उस पर हल तो चलाया नहीं, पथरीली जमीन है और हमने सोचा मैंने तो बीज डाल दिया तो फल कहाँ मिलेगा। फिर चलो बीज भी हमने अच्छा डाला और धरती को भी उपजाऊ बनाया, लेकिन जो ऋतु है वो उस समय उपयुक्त नहीं है। अब रबी के समय हम खरीफ बो दे, खरीफ के समय रबी बो दे, बारिश के समय पर हम गेहूं बो दे, कैसे चलेगा। और जब बारिश नहीं है तब हम ये चावल बो दे, तो समय जैसा है उस अनुसार भी हमें अपना कर्म का बीज बोना है। समय गलत है तो भी फल नहीं मिलेगा। तो समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सारी बातें कर्म और फल के बीच में आती है। इसलिए हम तुरंत ये नहीं सोचे मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया मुझे क्यों मिला, ये सारी बातें भी उनके साथ संलग्न है। फिर मान लीजिए ऋतु भी उपयुक्त है, परंतु हवा, पानी, धूप जो हम दे रहे हैं वो नहीं है तो भी नहीं मिलेगा फल। फिर मान लीजिए उसके बाद चलो सब कुछ सही है पर हम उस बीज की रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए कई लोग बीज डालने के बाद उसकी फेंसिंग करते हैं, क्योंकि पौधा निकलता है उसकी फेंसिंग करते हैं, नहीं तो कीड़े, जीव जंतु, जानवर, पक्षी खा सकते हैं। तो उसकी रक्षा भी बहुत जरूरी है। अंदर में वो समझ भी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ हाँ इसका नतीजा क्या होगा, अंदर में समझ के अनुसार करना चाहिए। और फिर उसके बाद धीरज भी रखना चाहिए कि फल पके। आजकल तो दवाइयां दे करके कैल्शियम कार्बाइड या जो कुछ भी वो देते हैं जिससे समझते जल्दी फल पक जाएगा, लेकिन वो फिर उसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं, वो नुकसान करता है शरीर को, वो तो हम समझते ही नहीं है। बस हमारा फल जल्दी पकना चाहिए, तो जल्दी पकेगा तो जल्दी बाजार में बिकेगा, हमको पैसा आएगा। लेकिन नहीं, कच्चा फल भी कोई समझो खा लेते हैं तो कोई काम का नहीं है। तो देर से पके वो मीठा होए, ये भी एक बहुत सुंदर कहावत है, पकने तो दो उस फल को। और फिर जब फल मिलता है तो खाओ और खिलाओ। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ तो जरूर मैंने कर्म का अच्छा बीज बोया है, इसलिए आज मैं स्वस्थ हूँ। बड़ी आयु होने के बाद भी हम स्वस्थ रहते हैं, एक्सरसाइज की है, ठीक भोजन किया है, अपने जीवन शैली को ठीक रखा है, तो मैं स्वस्थ हूँ। पर जिसने ये किया ही नहीं तो जल्दी उसकी उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान दिया ही नहीं अपने स्वास्थ्य पर तो बिगड़ जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बिगड़ने में देर थोड़ी लगती है, तो इसलिए ध्यान देना पड़ता हर बात पर, तभी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आज अगर मैं स्वस्थ हूँ पर इस स्वस्थ शरीर से मैं अगर कोई सेवा ना करूँ तो ये स्वस्थ शरीर पाकर भी मैंने क्या किया, क्योंकि सेवा करूंगी तो इसका पुण्य बनेगा, दुआएं मिलेगी तो और स्वस्थ रहेगा शरीर। तो भले अभी स्वस्थ है पर मैं इसे सेवा नहीं करूंगी तो ये बहुत समय तक स्वस्थ नहीं चलेगा, क्योंकि दुआएं भी चाहिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। दवा केवल नहीं चाहिए, दुआ भी चाहिए। तो तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, धन बहुत है, ये अच्छे कर्म का फल है। पर जो है उसका फिर सदुपयोग करो। अगर बीज है वो बीज ऐसे ही रख देंगे तो सड़ जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको फिर से धरती में डालो तो देखो एक का 100 गुना मिलेगा। तो इसीलिए खाओ और खिलाओ। अगर ऐसे ही फल बहुत हैं और न खाया न खिलाया तो सड़ गया। तो ये जो मुझे प्राप्ति है आज, ये मैं अपने तक ही सीमित मत नहीं रखूं, ये मैं बांटूं, औरों को दूं। जो मेरे पास खुशी है, प्राप्ति है, जो कुछ है, जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। कोई व्यक्ति लालची है, कोई व्यक्ति स्वार्थी है या कंजूस है, तो तो समझो वो अपना खाली पुण्य जो पिछला है वो खा रहा है, आगे का कुछ भी नहीं बना रहा है, क्योंकि किसी को सुख ही नहीं दे रहा है जो उसके पास प्राप्त है। अब ये सब कर्म की गति को हम समझते हैं, इसीलिए पहले तो अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि आप जो मन में विचार लाएंगे उसी से ही आपके शब्द बनेंगे। फिर अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि जो आप शब्द बोलेंगे एक दिन वो कर्म जरूर करेंगे। अगर जो शब्द बोल रहे वो करेंगे नहीं तो बोलो ही नहीं ना। कई कह मैं मार डालूंगा मार डालूंगा मार डालूंगा, तो बस कहता ही रहेगा कि एक दिन कर भी देगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो शब्द हम बोलते हैं वो एक दिन जरूर करेंगे, तो इसीलिए करो, करना नहीं है तो कहो ही नहीं। और जो कुछ हम करते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वो हमारी आदतें बनती जाती है। हम सिगरेट पीते हैं शराब पीते हैं, सोचते कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा ही लिया थोड़ा लिया, आज थोड़ा लिया कल दूसरी दोस्तों की संगत मिली फिर और ज्यादा लिया और ज्यादा लिया और ज्यादा लिया, फिर आप छोड़ ही नहीं सकेंगे। कोई सिगरेट पीता है वो सोचता है मैं पीता हूं, परंतु एक दिन आता है जो सिगरेट उसको पीती है, वो 2.5 इंच की सिगरेट 3 इंच की सिगरेट वो पूरे 6 फीट के इंसान को खत्म कर देती है। और हम पहले तो ये सोचते हम पीते हैं शराब, हम पीते हैं, फिर शराब हमको पीने लगती है, शरीर को नष्ट कर देती है। तो वो आदतें जो बनती जाती है, फिर उन आदतों से के आधार से क्या होता है, हमारा वैसा ही वो व्यक्तित्व बन जाता है। कहीं ये तो शराबी है, ये तो गुस्से वाला है, ये तो बहुत सिगरेट पीता है, ये तो सारा पैसा बर्बाद कर रहा है, वही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। और याद रखें वही आपका जो चरित्र बन गया वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। आपका भविष्य क्या होगा आपके चरित्र के आधार पर निर्धारित होगा। इसीलिए कहा जाता है अगर धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, क्योंकि स्वास्थ्य अगर एक बार बिगड़ता है तो फिर वापस वो स्वास्थ्य लाने में बहुत मेहनत लगती है, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और हम लोग उसके पीछे एक और वाक्य जोड़ देते हैं कि चरित्र गया तो केवल एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि वो आत्मा पर दाग लग जाता है। धन तो हाथों की मैल है, चढ़ता है उतरता है, सवेरे आप हाथ धोते हो फिर कुछ काम किया फिर मैल चढ़ गई, फिर धोया फिर मैल चढ़ गई, तो पैसा तो आता है और जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पैसा गया तो दुखी मत हो जाओ, आपकी खुशी पैसे से ज्यादा कीमती है, आपकी शांति उस पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। पर स्वास्थ्य है तो थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो हम देखते हैं मनुष्य स्वास्थ्य को खो करके केवल धन कमाने की कोशिश करता है, तो आधा जीवन धन पाने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया। पर जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो जो उसने धन कमाया वो फिर खर्च करना पड़ता है स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए, तो जीवन तो वैसे ही बर्बाद हो गया, क्योंकि जितना कमाया उतना फिर यूज कर लिया, स्वास्थ्य वापस फिर भी नहीं लौटता, ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसीलिए ये कर्म की गति को हमें समझना होगा कि हम जो भी पहले मन में सोचते हैं फिर उसकी वृत्ति बनती है, उसकी भावना बनती है, उसकी वाणी बनती है, उससे कर्म बनता है, उसकी आदतें बनती है, उससे वही व्यक्तित्व बनता है और फिर हमारा उससे भाग्य बनता है। तो हमें अगर बदलना है तो क्या बदले, केवल कर्म बदले नहीं, कर्म का आधार हमारी सोच है, तो सोच को हमें बदलना होगा। ये है मूल बीज, कर्म के बीज का भी बीज हमारी सोच। तो इसीलिए अब ये कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, इसके कारण ऐसे हुआ इसके कारण ऐसे हुआ, तो दोष ही देते रहते हैं दूसरों को। पर अगर कुछ मेरे साथ हुआ हम दूसरों को दोष कभी न दें, क्योंकि अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है। हमारा कर्म का फल और कोई नहीं भोगेगा, दूसरे के कर्म का फल मैं नहीं भोगूंगा। पहले जमाने में कहा करते थे आम के बीज के लिए कि दादा बोए और पोता खाए। बहुत देर से आम का फल निकलता था तो दादा के जमाने में वो दादा बोता था तो पोतरे के जमाने में पोतों को मिलता था, दादा को तो मिलता ही नहीं था। एक बूढ़ा आदमी बीज डाल रहा था आम का, तो किसने कहा इतने बूढ़े हो गए अभी तुम आम का बीज डालोगे कब फल खाओगे? तो कहा कोई बात नहीं मेरे पोतरे खाएंगे और मेरे दादा ने जो बोया वो मैं खा रहा हूँ, क्या बड़ी बात है। दादा के का बोया हुआ बीज पोता खा सकता है, पर वो आम के पेड़ की बात और है, पर कर्म का बीज मैं सोचूं मैं बोऊं और मेरा पोता खाए ये होगा क्या? मेरा दादा ने जो बोया वो मैं खाऊंगा नहीं। इस पर एक चुटकुला सुनाते, आजकल दुकानों में सेल लगता है ना, सेल सेल होता नहीं है कोई सेल, वो बढ़ा चढ़ा के करते फिर कहेंगे हमने छोटा हमने कम किया, तो सेल का आकर्षण से लोग बहुत चले जाते हैं। तो एक होटल था, उस होटल में बाहर लिखा था कि आप जितना चाहो इस होटल में खा सकते हो, रेस्टोरेंट में खा सकते हो, और आपका बिल आपके पोतरे भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं, आपके पोतरे आपका बिल भरेंगे, आपको जितना चाहिए खाओ। तो एक व्यक्ति गया खूब खाया और बिल आ गया, तो उससे कहा कि आपने तो कहा कि आपके पोते भरेंगे, आपके बाहर लिखा हुआ है बोर्ड पर, फिर बिल क्यों लाए? कहा साहब ये आपके दादाजी का बिल है। ये तो भूल ही गया कि मुझे दादाजी भी था। तो वो भी तो इस होटल में आया होगा, उसने भी तो खाया होगा, और ये कोई नया थोड़ी हमने बोर्ड लगाया है, तो कई सालों से। तो क्या हम भूल जाते हैं कि ये हो नहीं सकता, हमने खाया तो कोई मेरे पोतरे भरेंगे, वो क्यों भरेंगे, हमको ही भरना है। पर ये आकर्षण करने के लिए ये कई बातें होती हैं। तो अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए अपने कर्मों का फल भोगने की जिम्मेवारी भी आपको ही लेनी है। लेकिन दुखी होकर के मत लो, क्या मेरा कर्म, क्या मेरा नसीब, पता नहीं मैंने क्या कर्म किया है, पता नहीं कौन से जन्म का फल है, कर्म का फल है। दुखी होकर के मत स्वीकार, मत उसको लो, खुशी खुशी लो, मेरा है तो मुझे ही करना है। अब मैंने बच्चे जन्म दिए तो पालना तो मुझे ही करनी है, कोई दूसरा थोड़ी पालेगा। दूसरा कहेगा क्या, दूसरा कहेगा मैं क्यों तुम्हारे बच्चों की पालना करूं, तुमने पैदा किए तो तुम ही पालो। तो इसीलिए दुखी होके नहीं, खुशी से करो, है हिसाब किताब, इसलिए तो वो आत्मा मेरे पास आई है, जन्म लिया बच्चा बन करके, मेरा तो हिसाब किताब तो होगा ना। तो खुशी खुशी करो, करना तो यही है। वही बात आप खुशी खुशी करो या दुख से करो, करना तो यही है। अगर कोई रोग आया तो खुशी से उस रोग को चुप्तू करो या दुखी होके करो, वो भी आपके हाथ में है। इसीलिए जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, ये नहीं कहो कि दूसरे के कारण ये हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, जो हम दूसरे पर अपनी भूल को या अपने कर्म का फल पर फल को थोप देते हैं। तो कर्म ही जीवन का आधार है, ये भी हम समझे। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो कर्म करना ही नहीं है, इस संसार में आना ही नहीं, ये सब कर्म फल ये सब इसमें इस चक्कर में जाना ही नहीं है, बस हमको तो मोक्ष चाहिए, हमें तो इस संसार में आना ही नहीं है, हमको तो शरीर ही नहीं चाहिए, बस कई समझे मर जाऊं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे। पर चलो कितना भी आपने सोचा आत्महत्या कर ली, पर आत्मा तो मरी नहीं, ये तो और भी सिर पर ज्यादा पाप चढ़ा, क्योंकि जीव घात ये महापाप है। आत्मा का शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ ही नहीं है और आप किसी ने सुसाइड कर लिया, जीव हत्या की, आत्महत्या कहते, वास्तव में आत्महत्या तो होती ही नहीं है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, ये तो जीव हत्या होती है। परंतु वो आत्मा के ऊपर और पाप चढ़ गया, क्योंकि अब उसको जो उसका हिसाब किताब था वो तो चुप तो करना ही है। तो हम आत्महत्या करके समझेंगे कि हम दुखों से छूट जाएंगे, तो कभी नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है। और जिस समय आत्मा का शरीर से हिसाब किताब चुकतु होना होता है, तो आत्मा शरीर से पूछेगी भी नहीं कि मैं जाऊं, नहीं पूछेगी, हिसाब किताब पूरा हो गया, चाहे वो जवान है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है। पर ये तो जबरदस्ती अगर करते हैं, तो जबरदस्ती अगर किया तो हिसाब किताब तो पूरा था नहीं, फिर वो आत्मा भटकेगी, जरूर भटकेगी, क्योंकि ज्यादा अपने ऊपर पाप चढ़ाया। और अगर ज्यादा कोई कई समझते क्या, हर एक आत्मा जो सुसाइड करते हैं वो भटकती है क्या आत्मा, हम कहते ये भी जरूरी नहीं है, उसका हिसाब किताब पूरा होने का समय था, लेकिन सुसाइड या आत्महत्या एक बहाना बन गया, जरूरी नहीं। परंतु अगर उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो अवश्य उसको तुरंत जल्दी शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत पाप किए हैं। तो जिनके साथ हिसाब किताब है उनके आगे उनको हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, बहुत बार ये सारे बहुत, ये भी कर्म की बहुत बड़ी गति है, हम इन बातों में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये कभी ना भूले, कर्म हमारी पूंजी है, कर्म हमारे जीवन का आधार है, हम कर्म से छूट नहीं सकते हैं। कई समझ से बस मोक्ष मिल जाए हम छूट जाएं, शिव बाबा कहते हैं मोक्ष तो मिलता नहीं है, आत्मा को अपना कर्म तो करना ही है, सृष्टि मंच पर आना ही है। कोई सतयुग में आएगी तो कोई अभी भी आ रही है, कलयुग अंत तक भी परम धाम से उतर रही है, सभी तो सतयुग में नहीं आएंगे ना, सभी एक्टर्स तो एक साथ मंच पर नहीं आते हैं, पहले थोड़े आते हैं, धीरे धीरे एक्टर्स की वृद्धि होती जाती है मंच पर अंत के समय सारे एक्टर्स मंच पर खड़े हो जाते हैं और विदाई लेते हैं, क्योंकि पूरा हो गया ड्रामा। तो इस समय हम देख रहे हैं ड्रामा का, इस संसार ड्रामा का अंत है, लास्ट सीन्स चल रही है, तो इसलिए बहुत वृद्धि होती जा रही होती जा रही, आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती आ रही है। तो कोई सोचे मैं कर्म से ही बच जाऊं, कर्म में आऊं ही नहीं, इस संसार में आऊं ही नहीं, तो परमात्मा कहते आना तो है ही, चाहे सतयुग की आदि में आओ चाहे कलयुग के अंत में आओ, आना तो है ही एक बार एक साइकिल में। तो क्यों ना सतयुग में हम आए, जबकि हम हीरो एक्टर एक्ट्रेस बने, देवी देवता बने, मानव देव बन जाए, नर नारायण बन जाए, वो हम कर्म करें। इसलिए कर्म से तो हम छूट नहीं सकते, परंतु हम कर्म से शिक्षा जरूर लें। कर्म से क्या शिक्षा लें, कि जो हम बोते हैं वो ही काटते हैं, तो ये भय के आधार से मत सोचो, हाय मैंने ये किया है अब मैं क्या करूं, भय के आधार से नहीं, क्योंकि कर्म वो अच्छा या बुरा परिणाम है, जो कर्म फल वो अच्छा या बुरा परिणाम है जो आपके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर प्राप्त हुआ है, तो न्याय आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। परंतु इसको हम प्रेम से लेवे, इस कर्म की गति को हम प्रेम से लेवे, कि कर्म एक उपहार के रूप में मुझे मिला है, जो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए शिक्षा देता है, और वो तब तक शिक्षा देता रहेगा जब तक हमने उसे सीख नहीं लिया है। अब हमें सीखना है कि कर्म की गति क्या है, इसी अनुसार हमें कर्म को सुधारना है, कर्म को बदलना है, न कि केवल कोसते रहना है अपने कर्म को। तो इसीलिए दूसरे आपसे कैसा व्यवहार करते ही उनका कर्म है, तुमने मुझे क्यों ऐसे कहा ये कहने की जरूरत नहीं, उसने किया उसका कर्म, पर आप उनसे कैसा व्यवहार करते हो वो आपका कर्म बन जाता है। उसने गुस्सा किया उसका कर्म, पर मैंने क्यों गुस्सा किया तो मेरा कर्म तो बन जाएगा क्योंकि मैंने गुस्सा किया। कई बार माताएं जो है ना अपने बच्चों को बहुत मारती है, क्यों मारती है, एक बार मैंने देखा एक माता अपने बच्चे को बहुत मार रही थी, मैंने कहा क्यों मार रही हो माता बिचारी, इस बच्चे ने क्या दोष किया होगा, तो उसने कहा इसने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला, तो मैं इसको मार रही ताकि सुधर जाए, झूठ नहीं बोले। तो मैंने उसको कहा देखो बहन, अच्छा किस बात में झूठ बोला, क्या बात थी, तो कहा कि देखो ये शीशे का ग्लास इसने तोड़ा, और ये कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और मैंने दूर से देखा इसने तोड़ा, और मैंने जब पूछा तो इसने कहा नहीं मम्मी मैंने नहीं तोड़ा, तो मैंने कहा इसलिए झूठ बोला क्योंकि आप उसको मारने वाली थी। अगर आप उससे प्यार से पूछती होती कि बेटा सच बताओ आपने ये ग्लास तोड़ा, आपने तोड़ा, वो कहेगा हाँ मम्मी हाथ से टूट गया, पर आपने उसको थप्पड़ दिखाई, सच बताओ तुमने तोड़ा, नहीं 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 मैंने नहीं तोड़ा, झूठ बोल देगा। तो झूठ बुलवाने की निमित्त कौन बनी? झूठ, बच्चे ने झूठ क्यों बोला? माँ के गुस्से के कारण झूठ बोला। और अगर माँ प्यार से पूछती होती तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्यों झूठ बोलेगा? अगर झूठ बोला उसका मन खाता है। हमने तो कई बार देखा मम्मी के आगे झूठ बोल दिया, पर डैडी को कान में जाके कहेगा डैडी मैंने तोड़ा, पर मम्मी को नहीं बताना क्योंकि मम्मी मारती है। अब बताओ मम्मी मारती है, ये क्यों ऐसी माताएं आप लोग ऐसी बात बच्चों से, बच्चों की सुनते हो? मारो ही नहीं ना, मारने से थोड़ी बच्चा सुधरता है। आप उनको समझाओ, प्यार दो। इसीलिए उसने जो कर्म किया वो अगर उसने आपके गुस्से के कारण झूठ बोला तो बच्चे का पाप नहीं बनेगा, माँ का डबल पाप बन जाएगा। ये समझ लो माताएं, ये समझ लो। इसीलिए हम कहते कर्म के सिद्धांत को समझो, आप उनसे कैसा व्यवहार करते हो वो आपका कर्म बन जाएगा। ये मत सोचो कि मैं तो बच्चे को सुधारने के लिए ये कर रही हूं, नहीं। इसीलिए कर्म की गहन गति की समझ हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शक्ति प्रदान करती है। हम दूसरों को दोष देने के बजाय उस हर परिस्थिति का सामना सहज कर लेते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है मेरी भूल है, मैं अपने आप को बदल देती हूँ, मैं अपने आप को बदल देता हूँ। क्योंकि कर्म को समझना भी बहुत जरूरी है, कर्म का संन्यास तो करना ही नहीं है लेकिन कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। तो कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे कर्म? हम पहले ये समझे कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के कर्म होते हैं, एक है पाप कर्म, दूसरा है पुण्य कर्म, तीसरा है श्रेष्ठ कर्म, चौथा है अकर्म। अब पाप कर्म की परिभाषा हम क्या कहेंगे? जो भी नकारात्मक विचारों के वश होकर के किए गए कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी बेईमानी हेराफेरी, ये जो भी कर्म हम करते हैं इनके आधार से ये सब कर्म पाप के खाते में जाते हैं। और पाप कर्म का दो दरवाजा है, मैं और मेरा, मैं ऐसा हूं अभिमान वश कहा, और मेरा तो मोहवश कहा, लोभवश कहा। इसीलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल क्या? अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, पाप का मूल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तो पहला दरवाजा पाप का है मैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक कितनी बार हम अभिमानवश मैं करते रहते हैं, कितनी बार मेरा 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 करते रहते हैं सारा दिन, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा है, ये सब पाप के खाते में जा रहा है मेरा कर्म। और फिर हम कहते हैं मैं तो कोई पाप करता ही नहीं हूं, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि अभिमान वश मैं कहा माना ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं हूं आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, पर मैं अभिमान वश कह रहा हूं मैं, तो ये झूठ हो गया। मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाना है। केवल कर्म की पूंजी साथ जाएगी, बाकी कोई वस्तु नहीं जाएगी, ना आज न लेके आए हैं। लेकिन हम मेरा 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 कहते कितनी बड़ी चोरी करते हैं, ये चोरी है। अगर मोहवश मेरा मेरा कहते हैं तो कितना बड़ा पाप हम करते रहते हैं। तो देखिए चार प्रकार की वृत्तियां हम उनके वश हो जाते हैं। पहली वृत्ति है दानवी वृत्ति। दानवी वृत्ति क्या होती है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, मैं अपनी चीज तो नहीं दूंगा लेकिन तुम्हारी भी मैं ले लूंगा। ये दानवी वृत्ति है। और साधारण मानवीय वृत्ति क्या है, ठीक है मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, बंटवारा कर दिया भाई भाई का, फिर बेटा ये एक साइड ये दूसरा साइड मकान का दीवार बीच में खड़ी कर दी, तो मेरे तरफ नहीं आना मैं तुम्हारे तरफ नहीं आऊंगा, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए तो मेरा मत मांगना, बस हो गए अलग। ये साधारण इंसान की वृत्ति है। परंतु दैवी वृत्ति क्या होगी, मेरा सो हम सबका। अब यहां पर हम कोई आते हैं हम कहते हैं ये सबका घर है, भगवान का घर सो उनके बच्चों का घर, क्यों नहीं है, हम सबका घर है, खाली मेरा घर थोड़ी है। तो ये हम सबका है, ये दैवी वृत्ति है, मैं इस्तेमाल करूं इसको, आप इस्तेमाल करें, सब कोई भी करे, या कुछ भी प्राइवेसी है ही नहीं। और योगी वृत्ति तो उनसे भी ऊंची है, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का है। यही भावना रख करके हम चलते हैं, न आप ले आए न हम ले आए, ये सब भगवान की चीज है, हम भगवान ने हमें दिया है। अभिमान किस बात का, मोह किस बात का, लोभ किस बात का, ईश्वर का दिया हुआ ही है। और ये अगर हम वृत्ति अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। फिर पुण्य कर्म की परिभाषा क्या है, कोई भी स्थूल दान दक्षिणा ये पुण्य कर्म कहलाया जाता है, दान करने से पुण्य बनता है। लेकिन वो पुण्य बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, पुण्य तब बने जब दान करने वाला अभिमान वश न हो, गुप्त करे, दायां हाथ दान करता है बाएं को पता भी न चले, इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी और पूछ पूछ भी नहीं होती है, अच्छा काम है उसके लिए पूछो नहीं, पोस्टपोन भी मत करो, कल करूंगा कल करूंगा, इसलिए वो तुरंत दान महाकल्याण, अच्छा काम, नेक काम के लिए समय मत गवाओ, पूछो नहीं और वर्णन करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपने अच्छा भला काम किया किसी का तो वो आपका पुण्य कर्म बन जाएगा। लेकिन साथ साथ पात्र को भी दान दो, कुपात्र को दान देंगे तो निष्फल जाएगा। पुण्य तब बनेगा जब वो पात्र योग्य हो, पुण्य तब बनेगा जब वो कार्य जिससे हुआ वो सफल हुआ, अनेकों को सुख मिला उससे, तब वो पुण्य कर्म बनता है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा और पुण्य कर्म की परिभाषा को भी हमें समझना है। श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है, जो आत्मस्मृति में किया गया, परमात्मा स्मृति में किया गया कर्म, और पुण्य कर्म तो उस मनुष्य को याद करके किया, इससे श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म से ज्यादा ऊंचा है और फल भी ज्यादा ऊंचा है, इसको हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है, चरित्र रूपी धरनी सही हो, मेरी चरित्र रूपी धरनी सही हो, मैंने जो धन कमाया है वो सच्ची कमाई वाला धन हो, ये भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद संयम नियम रूपी खाद उसमें पड़ा हुआ हो तब मेरा कर्म सही होगा। फिर अच्छे माहौल रूपी वायु हो, अच्छे माहौल में हम तब रहेंगे, और परमात्म याद रूपी जल हम उसमें डालते रहेंगे और साथ साथ श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। हमको अभी फल नहीं चाहिए, अभी फल खाएंगे तो यहीं पर मिल जाएगा। इस कर्म का जो श्रेष्ठ कर्म हम संगम युग पर करते हैं, हम दो युग तक खाते रहेंगे, सतयुग और त्रेता युग तक ये फल खाते रहेंगे, मानव देव बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी, ये श्रेष्ठ कर्म का हम फल खाते हैं। पुण्य कर्म किया, थोड़ा दान किया, कुछ धन दान दिया, अन्न दान, वस्त्र दान, भू दान, रक्त दान, केवल चलो किया, एक जन्म का फल मिलेगा। पर श्रेष्ठ कर्म किया ज्ञान और योग की शक्ति से, आत्म परमात्म याद की स्थिति से किया, वो इतना ऊंचा कर्म बन जाएगा जो दो युग तक हम खाएंगे, मानव ऐसा देव बन जाएगा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान हम ऊंच देवता बन जाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो मानव देव बन जाए। और फिर अकर्म की परिभाषा, ये तीसरा प्रकार का कर्म है अकर्म। देवताएं जो है वो अकर्म करते हैं, उनके कर्मों का प्रभाव उनके जीवन पर कुछ भी नहीं पड़ता, ना वो अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है, उसको हम न्यूट्रल एक्शंस कहते हैं, अकर्म है। इस समय के सत्कर्मों का वो फल खाते हैं, वो फल भी समझे। तो इन्होंने कौन से कर्म किए? अकर्म किए। जो कर्म जिनका अलग कोई फल नहीं बनता, लेकिन वे कर्म ही फल के रूप में होते हैं, और वो फल खाते खाते सतयुग से त्रेता में आए। त्रेता से, जैसे त्रेता समाप्त हुआ, सत्कर्मों का फल समाप्त हो गया, अकर्म के रूप में सत्कर्मों का फल समाप्त हो गया, और वही देवताएं मानव बन गए। कई कहते हैं वो देवताएं सब कहाँ चले गए, हम कहते हैं यहाँ डायमंड हॉल में बैठे हैं। आप सभी कौन हो? वो सतयुग के देवी देवताएं हो कि नहीं हो? हो या नहीं हो, लेकिन इस समय साधारण रूप में हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे द्वापर युग से हमने पाप कर्म और पुण्य कर्म करना शुरू किया। सतयुग त्रेता में न पाप कर्म होता है न पुण्य कर्म होता है न सत्कर्म होता है, केवल अकर्म होता है। और द्वापर युग से पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म करना शुरू किए, इसलिए कलयुगी दुनिया में केवल दो प्रकार के कर्म जानते हैं लोग, पाप और पुण्य। पाप की परिभाषा क्या है? जो विकारों वश कर्म होते हैं। और पुण्य कर्म क्या होता है? जो कुछ हमारे पास है हम दूसरों की उनसे सेवा करते हैं, वो दान पुण्य बन जाता है। तो अभी हमें तीन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 63 जन्म हमने बहुत पाप किए, पुण्य तो उसकी भेंट में बहुत कम किया, बहुत कम, पाप ही ज्यादा किए। तो हमारे ऊपर द्वापर कलयुग में जो हमने जन्म लिए उसके उनके पाप कर्मों का बोझा बहुत सिर पर है, इसीलिए तन के रोग हैं, मन की अशांति है, धन की खींचातानी है और संबंधों में अनबन है। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। तो अभी हमें क्या करना है? ये 63 जन्मों के पाप कर्म का जो हमारे ऊपर बोझ है उसको खत्म करना है। और कैसे खत्म करेंगे? राजयोग के द्वारा, आत्मा परमात्मा के ज्ञान के द्वारा। कई लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान की क्या जरूरत है, बस अच्छा कर्म करो, किसी को दुख मत दो, ठीक है। लेकिन जो पिछला जन्मों का 63 जन्मों का पापों का बोझा है वो कैसे चुक्त होगा? वो तो राजयोग के माध्यम से चुक्त होगा। जो परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो इस राजयोग के माध्यम से हम 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करते हैं। और दूसरा, वर्तमान में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, कोई भी विकार के वश कर्म नहीं करना है। कई लोग यहाँ हमसे पूछते हैं आपकी फीस क्या है, हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। तैयार हो देने के लिए? कौन से खोटे पैसे? कौन से खोटे पैसे? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। क्योंकि इन्हीं पापों के, इन्हीं खोटे पैसों के कारण ही या इन विकारों के कारण ही हमने इतने पाप कर्म किए हैं और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हमसे पाप कर्म होते गए। और तीसरी बात है कि भविष्य जो 21 जन्म सतयुग त्रेता में हम पाएंगे उनके लिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी यहाँ ही जमा करनी है, इसी संगम युग पर। उसके लिए हर कर्म मुझे श्रेष्ठ बनाना है, हर कर्म परमात्मा की याद में करना है, हर कर्म में सबको सुख देना है, हर कर्म निस्वार्थ भाव से करना है, सबके कल्याण के लिए करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, फल अपने आप परमात्मा देगा। क्योंकि कई बार हम फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं, क्या मिलेगा इससे मुझे, अब मैं इतनी आप लोगों को 1.5 घंटे से सुना रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, शिव बाबा इसका फल देने वाला है। आप हमको 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देंगे, भाई लो बहन जी आपने इतना अच्छा लेक्चर किया, ये 1000 रुपया लो, हम आपका पैसा एक भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके लिए हमने नहीं किया, हमारा तो सत्कर्म बन गया, श्रेष्ठ कर्म बन गया, फल देने वाला शिव बाबा है। अगर आप देंगे भी तो मैं कहूंगी पेटी में डालना, ये बाबा की भंडारी है, इससे आपका भाग्य बनेगा। हम तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, आप जो देते हो शिव बाबा को दो, हम शिव बाबा से लेते हैं। अगर आपसे हम डायरेक्ट लेंगे तो हमारा अपना हिसाब किताब बन जाएगा, तो वो तो हमें बनाना ही नहीं है। इसीलिए कर्म फल को परमात्मा पर समर्पित कर दो, तो कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, हिसाब किताब नहीं बनेंगे व्यक्तियों के साथ। और अगर कोई तन का रोग है, दुखी मत हो जाओ, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, किसने दो गाली दी, दुखी मत हो जाओ, हिसाब किताब चुकतू हो गया। कोई धन की खींचातानी हुई, दुखी मत हो जाओ, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया। तो इसीलिए हिसाब किताब मुझे चुकतू करने, मुझे स्वतंत्र बनना है, बंधन मुक्त बनना है, छोड़ो तो छूटो, अगर ये बुद्धि में आएगा तो आप मुक्त हो सकेंगे। जैसे एक पक्षी एक डाली को पकड़ करके रखता है तो कभी छूट नहीं सकता है, कभी उड़ नहीं सकता है, पंख उसको है और वो देखता है दूसरे तो पंख से उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं, कैसे उड़ेगा, उसने तो डाली को पकड़ के रखा है, डाली से अपने पंजे खोले तो क्यों नहीं उड़ सकता है। तो इसीलिए दूसरों को दोष धरने के बजाय खुद को भी दोष मत दो, छोड़ो तो छूटो, जिसको हम कहते हैं लेट गो लेट गॉड। परमात्मा जानता है, हिसाब किताब अंत में उनके पास ही पहुंचने वाले हैं, वही न्यायकारी है। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कानून को अपने हाथ में मत लो, किसने मुझे थप्पड़ मारी और मैंने उसको गोली मार दी, अब ये तो गलत किया ना, उसे तो थप्पड़ ही मारी और मैंने गोली मार के उसको मार डाला, तो मुझे फांसी मिलेगी, जरूर मिलेगी, किसका जीवन लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। पर मैं कहूंगी उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारी, अच्छा थप्पड़ ही मारी, तुमने गोली क्यों मारी, केवल थप्पड़ी तो मारी उसने, पर गुस्सा आ गया तो गुस्से में तो कुछ समझ ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए आप कानून को हाथ में मत लो, कानून अपने आप काम करेगा, आप अपना श्रेष्ठ कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दो। तो देखो कैसे हम इस संसार के जो बंधन है उनसे हम छूट सकते हैं। कई कहते हैं कि आखिर हम संसार में आए क्यों, फिर बंधन से छूटो पर आए क्यों, तो तीन लक्ष्य लेकर के हम इस संसार में आए। पहला लक्ष्य था कि इस सृष्टि रंगमंच पर मैं मेहमान हूं, मैं एक्टर हूं, तो एक्टर होने के नाते आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार है, वो संस्कार कर्म करने के मुझे करने हैं, तो मंच तो चाहिए ना, इसीलिए आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई। किसी के अंदर गायन कला है वो सबको कहेगा मुझे गाने दो, मुझे गाने दो, किसने के अंदर नाचने की कला है, नृत्य कला है, तो कहेंगे हमको डांस करना। अभी एक बहन आई 10 बार का मुझे डांस करना, तो हमें अभी नहीं है? कला है तो कला आपने प्रदर्शित करना चाहती है, तो ये कर्म करना भी एक कला है, इसीलिए हम इस संसार में आए। और कर्म करते समय क्या लक्ष्य रखना है कि मुझे सबको सुख शांति प्रेम आनंद देना है, क्योंकि आत्मा के यही मूल लक्षण है। तो जब हम ये बुद्धि में सोचेंगे तो मन से वचन से कर्म से मुझे दूसरों को गुण देना है, शांति देनी है, प्यार देना है, खुशी देनी है, दुख नहीं देना है। और तीसरा लक्ष्य था कि मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए संसार में आया हूँ। भगवान ने हमें भेजा है ना, नहीं तो हम क्यों आए, भगवान ने हमें भेजा है तो किस लिए भेजा है, उनका नाम रोशन करने के लिए। तो हम जो भी कर्म करें उनसे हमारे पिता परमात्मा का नाम रोशन होना चाहिए। आज कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो पिता का भी नाम रोशन होता है, बुरा करता है तो पिता का भी नाम बदनाम होता है। तो हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं, इस निश्चय से हम आगे बढ़ते जाएं और परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को पावन बनाते जाएं। यही कर्म की गति का गुह्य ज्ञान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हो सकता है आपके मन में कुछ कई प्रश्न भी हो, लेकिन आप अभी सेवा केंद्रों पर जाकर के इन बातों को और आगे समझेंगे तो आपको सब प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। कई कहते हैं ये ज्ञान आपने कहाँ से लाया, ये परमात्मा ने हमें दिया। आज शाम को हम आपको 5 बजे बताएंगे कैसे परमात्मा ने ये सब नई रेवल्यूशंस दिए, ये नई बातें हमें समझाई है, और जैसे जैसे हम अपने जीवन में इनको लाते जाते हैं हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। ओम शांति। अब हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका अगला विषय भी बहुत ही अच्छा है, कैसे सदा खुश रहें और सबको खुशी बांटें, ये आपका अगला विषय होगा। ओम शांति। और फिर हम आपसे शाम को 5 बजे मिलेंगे बहुत ही अच्छा विषय लेकर, पिताश्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, और उसके बाद फिर बहुत सुंदर शांति की अनुभूति का एक सत्र होगा। तो इसीलिए अभी यहाँ ही समाप्त करते, फिर दूसरा विषय अभी होगा।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो।